परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है और वो मिथ्याचारी और दम्भी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले रोने तकरीबन यह गुट्टी पे आवे सबने, कहते हैं ये पाखंडी लोग हैं, दम्भी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना सातवें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्मयोग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य है क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध? इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर यदि हट और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़कर हठियो करके बैठ गया तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त तदार्थ मन उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा यजुर्वेद ये देखिएगा यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 में ऋषिदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहां से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा ये है यजुर्वेद और चतुवारी सो यानी 40वां अध्याय चतुवारी सो और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन या देवनागरी लिपि है। वायु वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किल्बे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक अनल माने होती वायु। इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया कि ओम कर्तु समर किल्बे समर। नीचे देखिएगा ओम कर्तो समर किल्बे समर और कर्तुम समर। अब देख इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहन की बुद्धि ने काम नहीं किया, उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सेवन कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय। ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यह अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम, को समर माने समण कर, किल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समरण कर, वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है। तो ऐसा जान कोई अर्थ है इसका? कोई सरपैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहां लिखा है ओम कर्तो समर काम करते करते श्रमण कर, और किल्बे किल्बे माने किल्बलाहट है, एक विशेष कसक के साथ तड़फ के साथ उस नाम का जाप करे। और कर्तुम माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक शरीर छूटते तक जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा श्रीमद भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 का श्रीमद भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। इनका अनुवाद यहां से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहां से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम, अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह एकाक्षरम, ओम इति यानी यह, केवल यही। एकाक्षर माने एक अक्षर, ओम यही। ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला ये ज्यों का त्यों है, यही परमात्मा के सुख संवेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की रूपी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा, यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमर लोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सुख संवेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान, ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म लोक। इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं, वो तो अच्छी बात है, एक धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे, लेकिन अब जब बच्चे सयाने हो जाएं तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कैदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने, अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी, तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है, ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा यह है 562 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय बताती, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सतर से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि सर्वपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहां देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है। देवी जी कह रही है, ब्रह्म को कह रही है, ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब हम ज्यादा न करें, यहां के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहां कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है, मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहां रहता है ब्रह्म? वह है, 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्म लोक में रहता है। ठीक। अब श्री मद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया, ओम का जाप कर यह ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, वो वहां रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। देखिएगा, ये है श्रीमद भगवत गीता, हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय और इसका हमने 12-13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये पुनरावृत्ति को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति उसको कहते हैं, जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्म लोक में। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, तीन गलत हो जाते जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो एक खाकनवा दिन का इसका अर्थ यहां पर यह बनता है कि जो ये नहीं जानते अर्जुन, विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, इसका सीधा अर्थ बनता है। इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि अर्जुन ने तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरी मेरी तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब चौथे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है चौथा अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहां इसका अनुवाद है, हे प्रंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए 9 में क्या कहा है कि हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है, और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए, सीधी सी बात है। अब 10वें अध्याय का 2वां श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ये देखिएगा 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, ये यहीं पर है, मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, सर्वपुरुष है, इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ, एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ, और इस ज्योत निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को न देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, न ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है, तो सबके दो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्म लोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण तो उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो, और वो ब्रह्म लोक में रहता है बस। तो ब्रह्म का जाप ओम मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक गए हुए सब लोग पुनरावर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावर्ती माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावर्ती कहा है। यहां कहा है ना परंतु, हे कौंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा, ये 16 श्लोक संस्कृत देखें। आप ब्रह्म भूनाथ ब्रह्म लोक पर्यंत लोका यानी सभी लोक उसमें गए हुए पुनरावृत्ति न, वहां गए हुए सभी लोकों में ब्रह्म लोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावृत्ति होती है, वहां गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, उस जो ये नहीं जानते अर्जुन माम उपेते मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये तीन गीता जी के तीन श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही है, ये गलत है, क्योंकि उनमें यह स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता, और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद इन सब का एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गुड रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था, और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी ये सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे, तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया, तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इसको भी थोड़ा निर्णय करेंगे। जिसका चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32, इसमें क्या लिखा है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, यो ब्रह्मणे मुखे, यहां गड़बड़ कर रखी इन्होंने अनुवाद में, कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इन्होंने अनुवाद कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के, यानी ये पहले जो बताए हैं 25 से लेकर, ये 25 से लेकर 30 तक का जो ज्ञान पहले बताया इसने, ये चौथे अध्याय का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक से ने शुरू किया है कि दूसरे अपने माने कुछ दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान बलि भारती अनुष्ठान किया करते हैं, कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नि, ये परब्रह्म नहीं ब्रह्म की पूजा करते हैं और कुछ आत्म यानी अपने आत्म चिंतन ही करते रहते हैं और कुछ कान आदि इंद्रियों को रोक राख के संयम कर करके हठ योग करते हैं, कुछ हवन किया करते हैं, कुछ वैसे ही का सब शरीर में शब्द सुनते रहते हैं। और 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग में अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ ऐसे कहते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जा और सांस बाहर आ उस पर ध्यान रख, अंदर जा उस पर ध्यान रख, ये उनकी साधना है। सांस पर ना ध्यान करेगा तब विवाद आ रहा है, सांस को तो सिमरण करना है उस मंत्र के साथ। तो यहां देखो 28 में क्या कहा है कि कुछ कई प्रकार के द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, कुछ तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं और कुछ योग करते हैं, केवल योग अभ्यास, जैसे कुछ ये देखो टीवी के ऊपर ऊपर न पैर कर लिए तो ने स्वर्ग निधर तो खड़े रहे, को पेट न घुमा घुमा कति इससे काम लागे रहे हैं, कुछ इससे भक्ति समझते हैं। अब आगे देखो चौथे अध्याय में हम 28वां पढ़ रहे हैं, यहां से योग रूप करते हैं और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ तो अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्त, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इस तरह की ये जो करते हैं कुछ तो ऐसा करते हैं और कुछ स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों के कुछ मंत्र पढ़ लिए, जप जी की का जाप कर लिया, कति सभी के सभी अपने और दूसरे कितने योगीजन अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राण ये योगिक क्रिया करते हैं, प्राणायाम आदि करके और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराते हैं, बस यही भक्ति है। तो ये प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पहार करते हैं, एक बार खाना खा लिया, सारा दिन में एक रोटी या केवल दूध पी लिया, प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी सांस मद को देखते रहते हैं और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी जो क्रिया कर रहे हैं ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा तो डड़े ढो रहे हो तो कौन करेगा इनको, कोई भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान रहा है तभी तो कर रहा है। अब आपको पता चला आपने त्याग दी तुरंत, नहीं तो पहले आप इसी ने फाइनल मान रहे थे जैसी भी साधना कर रहे थे, इसका ये अर्थ है। अब 32वें श्लोक पर आते हैं हम, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर 32, इसमें कहा है कि इस प्रकार, इनका अनुवाद पढ़ते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं ये लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख माने मुख कमल से जो बोलता है, ब्रह्मणे माने क्या है ये दिखा। अपनात्मा गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, किसी को भी कख पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, और बने बैठे थे महर्षि मुरलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य। अपना जीवन नाश कराया, हमारे पूर्वज डबो दिए, भूत बनवा दिए। अब ये दास बताएगा आपको ज्ञान, देखिएगा। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और 23वें श्लोक में, ओए होए, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है। तिर्विध है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 नंबर, इसमें अनुवाद सही किया इन्होंने, ओम ओम तत् तत् सत सत। तत् और सत का इन्हें सपने में बिना पता लग गए। अब ये गूढ़ रहस्य है, आज का जो सत्संग है विशेष होगा आपके लिए। ये ओम तत् सत ये तीन मंत्र हैं, किसके, ये देखिए इन्हीं के शब्दों में। ऐसे ये त्रिविध है, तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, अब देखिए, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके पश्चात जो जरा और मरण से छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, तो वो व्यक्ति उस तत् ब्रह्म से और सारे दातों से और सब कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, फिर वो तत् ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में 8वें अध्याय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये 7वां अध्याय 29वां श्लोक, ये केवल मूल पाठ है। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, माम आश्रिता यतन्ति ते, मेरा इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत को खोज ले, उसके खोजने के बाद ये ते जो खोज लेते, ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को जानते हैं, कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम, के सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। अब इनका अनुवाद देखते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। ये जरा मन लिखना था वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वो व्यक्ति तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म यानी काल को, संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां अर्जुन ने पूछा, 8वां अध्याय सामने है बिल्कुल, एक श्लोक और बीच में है 30वां, इसमें कोई विशेष नहीं कहा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस अंतकाल में मुझे ही जानते हैं और मुझे ही जानते हैं, बस मेरे तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। फिर यहां 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, वह तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपुणात्मा आपकी पीएचडी करवा दूंगा और अंगुलियां बनोट करवा दूंगा सारे शास्त्रों के सलोक मंत्र ते ब्रह्मा जी और विष्णु आ जियो आपके सामने, ते शिव जी आ जियो, सबके ज्ञान में परास्त कर दोगे उनको। अब देखिएगा श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 में आगे इसमें कहा है कि इस प्रकार यानी जो 25 से 30 तक बताया है उससे ऐसे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे माने सचिदानंद गण ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, सत्पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसको कबीर देव कहो। वो कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर आता, ये वेद बताते हैं कि अपने मुख कमल से वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है जो भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से। और इसमें मूल पाठ में संस्कृत भी स्पष्ट करती है ब्रह्मणे मुखे, मुख माने मुंह मुख, और ब्रह्मण माने सचिदानंद गणब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। देखो अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको 10 अनुवाद करके समझा रहा है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू ये कहता कर्म जान, मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान है। कर्म जान माने परमात्मा जो ज्ञान देगा सूक्ष्म वेद में, वो क्रियाएं काम करते करते करनी होती हैं, शारीरिक क्रियाओं को काम करते करते उसका सेवन और ध्यान भजन करना होता है। कर्म जान यानी मन इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान वो ऐसे होते हैं। इस प्रकार तत्व से जान कर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वता मुक्त हो जाएगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म वेद वो है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता है गति करके और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं यथार्थ ज्ञान, और कवियों की तरह आचरण करते हुए वो गूढ़ रहस्यों और गुप्त मंत्रों को आविष्कृत करते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आपको बताते हैं, ये है गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से परिणिपातेन और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्वों को जानने वाले तत्वदर्शनी वह तत्वदर्शी संत विद्वान ज्ञानी माने विद्वान पुरुष तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, वो कैसे आता है ये थोड़ा सा ऋग्वेद को भी साथ लेंगे हम। देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल ये इकट्ठे ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये यहां से छपा है। अब इसके हम थोड़े से श्लोक पढ़ेंगे, घना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। इसमें क्या कहा है? इसमें यह कबीर शब्द है, ये कबीर लिखते हैं, हम कबीर बोलते हैं इसको। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजोमय शरीर वाले परमात्मा कबीर दे। ये कबीर शब्द है, कबीर हम इसको कबीर बोले, वह को इन्होंने ये अपसर्ग लगा के ऐसा कर दिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ कवि बना दिया और कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है? इनकी अकल मारी जा रही। अब देखना, अब पहले ये निर्णय करते हैं कि जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये यजुर्वेद है और इसके अपसर हटा कर ये रे यहां लगा दें दो और वेद अलग कर दें और यजु लिख दें और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो तो अनुवाद करता बुद्धिमान उसकी बुद्धि सलप नहीं करेगी तो वहां करेगा यजुर्वेद लिखेगा। ऐसे ही जहां कबीर भी लिखा है इन्होंने अपसर्ग लगा के तो इसके अनुवाद में लिखना पड़ेगा कबीर देव। हम उसने कबीर देव के बोले कबीर देव कबीर, हम वह को वह बोलते, वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम धर्मवीर है तो हम उसको धर्मवीर बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है तो हम उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। तो यहां सिर्फ एक भाषा के बोलने का अंतर है और भगवान का नाम वही है। इस यजुर्वेद से करते हैं स्पष्ट आपको, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवादित है, ये देखिएगा ये है प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा ये सारा और ये अनुवादक और ये प्रकाशक। अब इसके आते हैं हम 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 63वां अध्याय 36वां अध्याय और इसमें मूल पाठ के अंदर एक यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ओनली, ये यजुर्वेद की महिमा है यहां पर। तो यहां पर इस महर्षि दयानंद ने ठीक अनुवाद कर दिया, यहां देखो ये इसी का अनुवाद है, ये लिखता है वाणी की प्रेरणा को प्राप्त हो मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजु माने यजुर्वेद को प्राप्त हो। तो यहां यजुर्वेद की महिमा थी, बेशक यजु लिखा था तो इन्होंने यजुर्वेद लिखना पड़ा। अगर यजु भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको समझाने के लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद के ऊपर, ये भी ये वहीं से प्रकाशित आपको, ये यहां से ये इसके प्रकाशक है वही जो, और ये यहां से ये प्रकाशित है। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे, ये देखो 26 यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों का नाश करता है मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। परमात्मा का वहां सतलोक में शरीर की शोभा इतनी है, एक रोम में एक बाल में रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है और पूरी बॉडी का कितना हो गया मनुष्य दृश्य है परमात्मा। तो अगर वो एज इट इज यहां आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बना कर आते हैं और यही गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें मिलते हैं। अब देखिएगा अपने रूप को और सरल करता हुआ वह कांति में माने तेजो में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यह हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वज्ञ। वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होते होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आके मिलता है। और वो कहां रहता है देखो, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 986 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा धूलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजेव। राजेव माने राजा के समान, राजा के समान राजेव, यहां राजेव है, राजेव राजा के, यहां देख लो 269 पृष्ठ पे और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे, कोई जो ना कहे जब पृष्ठ गुणा बदल गए होंगे 270 पृष्ठ पे। राजेव माने राजा के समान, ओए होए राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहां परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है। यही गरीबदास जी कहते हैं अरस कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर अर्श कुरुष पर सवेत गुमज है जहां परमेश्वर का डेरा। कहते सवेत चक्र शर मुकुट विराज है, ऊपर छतर, सवेत छतर शर मुकुट विराज है और देखत ना उस चेहरे नु। ये निराकार निराकार कह बकवास कर रहे हैं कि तुमने साधना ठीक मिली नहीं, भगवान वो दिखाई दिया नहीं जिसके सिर पर सफेद छतर है, सिर पर मुकुट है और सिंहासन पर विराजमान है। यही वेद बता रहे कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है, राजा की तरह बैठा हुआ मुकुट मकट पहनकर, वो देखने में राजा के समान दर्शनीय माने देखने जोग के देखने में उसकी उस प्रकार है। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्देमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, ओए होए जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको आके मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ओए होए। अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सबकी रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है।
बंजी नमस्कार।
नमस्कार ससाहेब।
बंजी क्या शुभ नाम है आप जी का?
चंद्रकला।
बंजी कहाँ से आए आप?
कोटा राजस्थान से, खेड़ा रसूलपुर गांव है हमारा।
बंजी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
भक्ति तो इसे नाम तो मंत्र जाप तो नहीं करते, रामलाल जी से आई थी उसने नाम दिया था, मंत्र ने किया और लक्ष्मीनाथ का मंदिर की पूजा करते हैं। माता जी को हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते, उनकी भक्ति करते।
तो जो आप भक्ति करते थे लक्ष्मीनारायण के मंदिर में, हनुमान जी को मानते थे और रामलाल जी सियाग से आपने नाम उपदेश ले रखा था, उससे भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
उससे कुछ भी लाभ नहीं मिला, लाभ तो नहीं मिला। और हमारे 18 साल के लड़के ना उसकी तो गए।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप?
हमारी लड़की चिन्ह टीवी देख रही साधना चैनल पर जी, ऐसे देखती हो उन्हें देखते देखते परमात्मा को प्रोग्राम आयु ना, तो उन्हें वर्मा जी का पिता को ने, विष्णु जी के माता को, शंकर का दादा को से देख कर उनके लगाने परमात्मा जी, उनकी मम्मी देख तो क्या आ रहा है, कभी नहीं सुना आपने, कभी देखा कौन तो उनकी मन की क्या है, उन्हें देखा तो कैसे आ रहा है। देखे देखते रहे एक दो दिन देखते रहे, फिर हमारी टीवी खराब होगी तो बच्चा पढ़ता है ना, अतरो ज्ञान नहीं है तो कौन छो, तो फिर मन देखते देखते टीवी खराब होगी तो इसे न देखे को बच्चा पढ़ रहा है और रेन दे, फिर ऐसे करता करता परेशान हो गया मैं, फिर दो महीना भरे हो गया उसको शांत हो गया, मन नहीं लगता है, फिर उनकी टीवी ठीक करा ला इसमें मन लग जाएगा, तो टीवी देखी तो एक दो दिन फिर वो बच्ची रोती हुई ना वो प्रोग्राम देखे, बाद में एक दो चार दिन प्रोग्राम देखे उन्हें कि मम्मी परमात्मा कब बुलाओगे, रसोई में खाना बना रही थी ना तो रोई अपना आप अंदर से लगन हुई वो परमात्मा के लिए, तो रोई हुआ कब परमात्मा टीवी में दिखाएगी हमें बुलाओगे कब आश्रम, तो ऐसा ये एक मिनट भी नहीं हुआ ऐसा रोर बार आई मैं कि मम्मी कब चल गया आश्रम, मैंने कि परमात्मा बुलाओ जी भी चलेंगे, तो अटी तो मैं से बोल रही हुआ और उठी छोटो लड़को जी मारू जी ने उनका मौसा जी को फोन किया, मौसा जी आप कब आओगा गुरु जी के चलूंगा, कल तू कदे जी भी आ जाऊ कल सुबह आ जाओ, तो मन तो की भी कौन उसे फोन करवा की उन्हें फोन कर रहे सुबह आ गया तुम परमात्मा के यहाँ आ गया उनका मौसा जी लेर, तो यहाँ आर नाम दीक्षा ले ली परमात्मा के यहाँ आया आशीर्वाद मार बहुत ज्यादा हवा को चक्कर से तो गुम बची मुँह परेशान हो ची बहुत ज्यादा आशीर्वाद देता है परमात्मा ने, असि जान दो चार क्विंटल वजन शरीर पर से उतरे से वजन उतरा हमारी ननद का भी सही हुआ, उन्हें भी नाम दीक्षा ली परमात्मा से, और लड़की आई ना तो दीक्षा नाम है उसका, उन्हें परमात्मा के देखे औरतों को अतनु तेज देखो पूरा परमात्मा को तेज दिखो जो वो, तो परमात्मा ने उनको दर्शन दिया, हम फिर परमात्मा ने ऐसे कृपा करी हम पे।
बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिला?
एक तो हमारे शरीर को सुख मिला परमात्मा नाम दीक्षा लेने के बाद, और परमात्मा ने यहाँ से जाता है नाम दीक्षा ले गया दो तीन दिन बाद में परमात्मा ने कबीर परमेश्वर का रूप में दर्शन दिया, हम ऊपर टोपी लाग रही जी कुर्तों पजाम पर डाडी थी और पलोट जैसे हम एक मकान से जी हम बैठे और वो परमात्मा जी ना जा रहे आ रहे ऐसे दर्शन दिया, और एक दिन सो रही थी लेट रही थी पलंग पर, तो परमात्मा ने जी ना जी तीन रूप में दर्शन दिया हमें, पहले तो कबीर पर छोटा रूप में दर्शन दिया परमात्मा ने, फिर गरीबदास जी का रूप में दर्शन दिया परमात्मा ने, और फिर वो जागिट फिर है ना उन रूप में दर्शन दिया परमात्मा ने, दिन में ही दिया क्या मछली मारी तो परमात्मा ने टीवी पर मैं दर्शन दिया, और एक बार मारे कमर दुखो जी मैंने की परमात्मा मारी कमर बहुत ज्यादा दुखो जी, तो परमात्मा ने टोपी लाग रही कालो कुर्तो पर लंबो, और परमात्मा आश्रिया मार आडी आशीर्वाद दे परमात्मा ने, तो हमारे कमर दुखो जी ने मुझे लेट रही ना तो दो डंडा घुमाया हमारे कमर पर, फिर दो डंडा खड़ा कर तो मुँह नींद में बहुत ज्यादा दुख रही थी दिन मारे कमर, तो सुबह उठी ना तो परमात्मा ने मारे कमर ठीक हो पाई बहुत ज्यादा लाभ होया, और फिर हमारे सासू जी ने की ओरचा कोई जहाँ कोई परेशानी थी तुम्हान बताई माँ को तो बहुत ज्यादा परेशान था दस साल से कोई चक्कर चुका सिर दर्द कर तो उन्होंने की वहां जाब करो माँ को वहां जाओ जी परमात्मा की शरण में परमात्मा आया हो या जी वो, तो वहां को टीवी पर चैनल आस्था साधना चैनल पर प्रोग्राम आओ तो देख भो करो, उन्होंने देखो एक दिन देखता है मार तो सिर दर्द होगी सीटी स्कैन करावा के लेगा जा रहा जो सीटी स्कैन कराऊंगा मारे माँ तो दर्द करो जी, तो प्रोग्राम देखता है वो चार पांच घर पर आ गया तो खब चा लगा मान के माँ तो रात ही आए जो वहां से प्रोग्राम देख सत्संग में से, तो वहां ने की माए तो रस्तो बता दो, फिर वहां ही रस्तो बताई, फिर वहां ने की मैं अकेला न जाऊंगा तो आप कोई कोई चालो मारे साथ, फिर मारे लड़को जो 13-14 साल को जी भेजो जी जो आभारी हो अगलो सत्संग जी में नाम दीक्षा ले गया बहुत आराम छो का परमात्मा ने बहुत दया करी।
बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
तो ये संदेश जानना चाहता हूँ परमात्मा आया हो या कहीं भी मत भटको, और बहुत दिनों से लगन ची परमात्मा की वो परमात्मा में मल चुका मुफल या सो सची मंदिर की पूजा करते हैं हमारे, तो परिवार में सबका कोई का तो भूत बन रहा कोई का भूत बन रहा है, तो मुझे सो सच के जी मंदिर की पूजा करे चाहिए तो वहाँ का घर में भूत भूत तो पास ही नहीं आने चाहिए, तो उनके सबके आता है तो तुम कोई भी मैं जवाब नहीं देता का ये क्या है, और यहाँ परमात्मा की शरण माता है मैं वो पता लग गया कि भूत भूत परमात्मा के पास भी नहीं आता है, भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हो कि परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।